आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। मंगला देवी चरखा सेंटर की मास्टरनी जी बीमार है। डॉक्टर ने खून जांच कर देखा, काला आजार नहीं, टाइफाइड नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर तहसीलदार साहब के गुहाल में रहते हैं और मास्टरनी जी भगवान भगत की एक झोपड़ी में। भगवान भगत ने गाड़ी बैल रखने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी। अगले साल टीन का मकान देने का इरादा है, इसीलिए इस बार गाड़ी बैल नहीं खरीद सका। चरखा सेंटर खोलने पर गांव के लोगों ने भगवान भगत से कहा, घर तो खाली ही है, मास्टरनी जी के रहने के लिए घर नहीं है। चरखा सेंटर का घर बनेगा तो आपका घर खाली कर दिया जाएगा। कोटा परमिट के जमाने में कांग्रेसी लोगों की बात काटना ठीक नहीं, नहीं तो कटिहार में इतनी बड़ी झोपड़ी का ही किराया 15 रुपये मिलता। मंगला देवी ने हैजा के समय रात रात भर जागकर रोगियों की सेवा की और जब वो खुद बीमार पड़ी तो उनके पास बैठने वाला भी कोई नहीं। चरखा सेंटर के दोनों मास्टर साहब बारी बारी से एक एक घंटा ड्यूटी दे जाते हैं। रात में चिचाई की माँ आकर सोती है, लेकिन बूढ़ी इतना हुक्का पीती और खांसती है कि मंगला देवी के ज्वर की ज्वाला और भी तीव्र हो जाती है। बुढ़िया जब सोती है तो इतने जोरों के खर्राटे लेती है कि पास पड़ोस की नींद खुल जाए। डॉक्टर कहता है यदि यही हालत रही तो संभालना मुश्किल होगा, घर खत लिखकर किसी को बुला लेना ठीक होगा। घर यदि घर से कोई आने वाला होता अथवा खबर लेने वाला होता तो मंगला देवी चरखा सेंटर में क्यों भर्ती होती? उसे घर छोड़े हुए 5 साल हो रहे हैं। मंगला देवी ने दुनिया को अच्छी तरह पहचाना है। आदमी के अंदर के पशु को उसने बहुत बार करीब से देखा है। विधवा आश्रम, अबला आश्रम और बड़े बाबुओं के घर आया की जिंदगी बिताई है उसने। अबला नारी हर जगह अबला ही है। रूप और जवानी नहीं, ये भी गलत, औरत होना चाहिए। रूप और उम्र की कोई कैद नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुखचैन से नहीं सो सकती। मंगला देवी के लिए जैसा घर वैसा बाहर, उसका कौन है अपना? कोई नहीं। कौन? कालीचरण बाबू, डॉक्टर साहब ने कहा है कि झोपड़ी में आपकी बीमारी अच्छी नहीं होगी। हम लोगों का कीर्तन वाला घर साफ सुथरा है, हवादार है। मंगला देवी यादव टोली के कीर्तन घर में आ गई है। कीर्तन घर में ही सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस है। कालीचरण इसे ऑफिस ही कहता है, लेकिन सोशलिस्ट ऑफिस का नाम सुनकर मंगला देवी शायद नहीं आती। दवा पी लीजिए। नहीं पीऊंगी। पी लीजिए मास्टरनी जी दवा। काली बाबू एक बात कहूँ? कहिए। आप मुझे मास्टरनी जी मत कीजिए, तब क्या कहूँ? क्यों, मेरा नाम नहीं है मंगला देवी? नहीं तो सिर्फ मंगला। दवा पी लीजिए, मंगला कहिए। मंगला 15 दिनों से कालीचरण मंगला देवी की सेवा कर रहा है। दिन में तो और लोग भी रहते हैं, लेकिन रात में कालीचरण की ड्यूटी रहती है। डॉक्टर कहते हैं अब कोई खतरा नहीं, कमजोरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मंगला देवी के शरीर में सिर्फ हड्डियां बच रही हैं, बाल झड़ रहे हैं। वो खाने के लिए बच्चों की तरह रूठती है, रोती है और बर्तन फेंकती है। बार्ली नहीं पीऊंगी, छेना का पानी भी कोई भला आदमी पीता है? कालीचरण हाथ में पत्ते का कटोरा लेकर घंटों खुशामदे करता। लीजिए इसमें नींबू डाल दिया है, अब खा लीजिए, कल नहीं परसों भात मिलेगा। कालीचरण का व्रत टूट गया। उसके पहलवान गुरु ने कहा था, पढ़े जब तक अखाड़े की मिट्टी देह में पूरी तरह रचे नहीं, औरतों से 5 हाथ दूर रहना। कालीचरण का व्रत टूट गया। 5 हाथ दूर रहने से मंगला देवी की सेवा नहीं की जा सकती थी। बिछावन और कपड़े बदलते समय, देह पोंछ देने के समय कालीचरण को गुरुजी की बात याद आती थी, लेकिन क्या किया जाए। काली कहाँ गया? काली क्या है? कहाँ की चिट्ठी है? सेक्रेटरी साहब ने लिखा है सोमवार को जिला पार्टी की रैली है, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा? क्यों, तुम जाओ? मैं तो अब अच्छी हो गई। रैली के बाद सेक्रेटरी साहब ने कालीचरण को रोक लिया है। कॉमरेड आप 2 दिन और रह जाइए, सैनिक जी की स्त्री अस्पताल में भर्ती है। सैनिक जी पटना गए हैं, परसों आ जाएंगे। अस्पताल में दोनों बेला खाना पहुंचाना है, कोई है नहीं। सेक्रेटरी साहब की बात को टालना बड़ा कठिन है। कामरेड की स्त्री कालीचरण को रह रहकर मंगला की याद आती है। वो राह देख रही होगी। वासुदेव जाकर कहेगा कि दो दिन बाद आएंगे। सुनते ही उसका मुंह सूख जाएगा, चेहरा फक हो जाएगा। एकदम बच्चे की तरह है मंगला का मुंह। कालीचरण ने बिधाना और संतोला भेज दिया है, वो छुएगी भी नहीं। वासुदेव क्या समझाएगा? हद तेरे की, ये शहर के लौंडे बड़े बदमाश होते हैं। टीक पीठ के पास जाकर साइकिल की घंटी बजाएगा। अब अभी तो सब खाना गिर जाता। उल्लू कहीं का गिलास ऐसा ही धोता है। उल्लू कालीचरण के गाल पर मानो किसी ने जोर से एक तमाचा जड़ दिया। उल्लू उसका सारा शरीर झिनझिन कर रहा है। सैनिक जी की स्त्री ने उसे क्या समझा है? नौकर, बहन जी गिलास, खबरदार बहन जी मत बोल। बगल की खाट पर जो चमगादड़ जैसी औरत लेटी हुई थी बोली, कौन देश का आदमी है? आदमी है या भूत? बात भी नहीं करना जानता है। अरे जानती नहीं है, ग्वाला 60 बरस तक, सैनिक जी की स्त्री बोली। कालीचरण पूरा सुन नहीं सका, उसका सिर चकराने लगा। सैनिक जी भी तो ग्वाला ही है। कालीचरण की आंखों के आगे सरसों के फूल जैसी चीजें उड़ने लगी। यदि किसी मर्द ने ये बातें कही होती तो आज खून हो जाता। खून, कालीचरण की कनपट्टी गर्म हो गई है। मंगला देवी भी तो औरत ही है। कहां मंगला और कहां ये भूतनी। गले की आवाज एकदम खिखिर की तरह है। बातें करती है तो लगता है मानो दांत काटने के लिए दौड़ रही है। शायद ये भी कोई रोग ही है। रोहतहट स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर कालीचरण जल्दी जल्दी घर लौट रहा है। उसे देखते ही मंगला खुशी से खिल जाएगी। संतोला सूख गया होगा, विधाना पड़ा होगा। दोनों ओर का रेल भाड़ा बचाकर कालीचरण ने एक पैकेट बिस्कुट खरीद लिया है। डॉक्टर साहब ने मंगला को बिस्कुट खाने के लिए कहा है। कालीचरण ने कभी बिस्कुट नहीं खाया है, शायद इसमें मुर्गी का अंडा रहता है। वो रह रहकर बिस्कुट के डिब्बे को छूकर देखता है, इसके अंदर कुड़कुड़ क्या बोलता है? कहीं अंडा फूट कर सत्ताराम सत्ताराम, जय हिंद काली जी। ओ बावनदास जी, हम तो चमक गए, यहाँ क्यों पड़े हैं? आप तो इस तरह आंखें मूंद कर सरेसा घोड़े की तरह चले जा रहे हैं। जंगली जामुन के पेड़ की छाया में बावनदास लेटा हुआ था। छाया में जाने पर कालीचरण को मालूम हुआ कि धूप कितनी तेज है। हम तो रात की गाड़ी से ही उतरे, कल दफा 40 का फैसला हो गया।
हो गया? क्या हुआ?
अरे होगा क्या, सबों की दरखास्त खारिज हो गई। हम पहले ही जानते थे, कल गांव के सभी रैयत आए थे। फैसला सुनकर सभी रोने लगे। अब जमींदार जमीन भी छुड़ा लेगा।
जमीन छुड़ा लेगा? नहीं, उस दिन हम लोगों की रैली में प्रस्ताव पास हो गया। जमींदार लोग रैयतों को जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, इसके लिए पार्टी संघर्ष करेगी।
काली बाबू, प्रस्ताव उपरस्ताव से कुछ नहीं होता। बावनदास के होठों पर भेद भरी मुस्कान दौड़ जाती है।
आप बैठिए दास जी, हमको जरा जल्दी है।
हाँ हाँ, आप जाइए, हम आपके डेक पर जा भी नहीं सकेंगे।
कालीचरण चलते चलते सोच रहा है, अब ठीक हुआ है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते। अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे।
क्या है बिस्कुट? मंगला देवी प्यार भरी झिड़की देती है। किसने कहा फिजूल पैसा खर्च करने को? वो देखो तुम्हारा संतरा और बेदाना पड़ा हुआ है, मैं नहीं खाती।
डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर साहब ने कहा था, मंगला बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहती है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि खुद भूखे रहकर संतरा बेदाना और बिस्कुट खरीद कर लाना।
कालीचरण को सैनिक जी की स्त्री की याद आती है। उल्लू 60 साल तक नाबालिग।
खा लो मंगला, पहले तुम एक बिस्कुट खाओ।
बिस्कुट मीठा कुरकुरा और इतना स्वाद वाला होता है, इसमें दूध चीनी और माखन रहता है, अंडा नहीं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।